厉害的这个大他妈他个混在厉害的जयं गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयं गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशास्त्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवचिस्कॉन फाउंडर आचार्य शिवदी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 15। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीं च सर्वानुरगां च दिव्यान् अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीं च सर्वानुरगां च दिव्यान् अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा पश्यामि देखता हूँ देवान् समस्त देवताओं को तब आपके देव हे प्रभु देहे शरीर में सर्वां समस्त तथा भी भूत जीव विशेष संघान विशेष रूप से एकत्रित ब्रह्मानं ब्रह्मा को, ईशम शिव को, कमल आसन स्थम कमल के ऊपर आसीन, ऋषि ऋषियों को, च भी सर्वान समस्त उरगान सर्पों को, च भी दिव्या दिव्य। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। श्लोक फिर से समझेंगे। श्लोक निकालिए। अर्जुन कह रहे हैं पश्यामि देवां तव देव देहे, हे देव आपकी देह में मैं देवताओं को देख रहा हूँ, सर्वान तथा भूत विशेष संग्रहण और प्राणियों के विशेष समुदाय आपके शरीर में देख रहा हूँ, ब्रह्मांडम ईशम ब्रह्मा जी को देखता हूँ, ईशम शिव जी को देखता हूँ, कमलासनस्थम कमल के आसन पर विराजमान है, ऋषिंसा सर्वानुरागांश दिव्यान ऋषियों को देखता हूँ और जितने दिव्य सर्प हैं उनको भी देख रहा हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखते हैं, अतः वे ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं और उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखते हैं। तो ब्रह्मांड के सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी हैं, उनको देखते हैं। और दिव्य सर्प जिसकी सजा में गर्भोदकशाय विष्णु लेटे हुए हैं ब्रह्मांड के सबसे नीचे हैं, है ना, तो उसको भी देखते हैं। इस शेष सैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे, ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन विस्तार है ब्रह्मांड का, 50 करोड़ योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं। तो 50 करोड़ योजन का मतलब क्या हुआ? 8 से गुणा करेंगे तो 400 करोड़ मील, 400 करोड़ मील जो है ब्रह्मांड का विस्तार है। और अर्जुन देख रहे हैं अपने रथ में बैठे हुए। आज तक कोई भी इतना वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ है कि इतनी दूर की चीजें कोई व्यक्ति देख सके, लेकिन अर्जुन देख रहे हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके शरीर में सब देवताओं को देख रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत में यही बातें बहुत विस्तार से वर्णित हुई हैं कि भगवान के शरीर से कैसे देवता उत्पन्न हुए, भगवान का जो विश्व रूप है ये प्रकट होता है और फिर उसी से ही भगवान के विश्व रूप से ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जो श्रीमद् भागवत में 30 स्कंद के 5वें अध्याय में मैत्रेय जी बताते हैं भगवान के विश्व रूप के बारे में, तो मैं इसमें से कुछ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। विभिन्न देवता कैसे हुए, देवताओं से फिर कैसे सृष्टि हुई और भगवान विश्व रूप में कैसे प्रकट होते हैं, तो इसको आप जरा सुनिए। मैत्री जी कहते हैं अतएव मैं आपको उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। अतते भगवल लीला योग मायो रुब्रीहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनु पूर्वशः। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पहले विद्यमान थे, केवल उनकी इच्छा से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है और सारी वस्तुएं उनमें ही अंत में समा जाती हैं, भगवान में समा जाती हैं। इन परमात्मा को विभिन्न नाम मुंह से पुकारा जाता है। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्म नाम विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मत्युप लक्षण। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा है। निर्विवाद स्वामी भगवान ही हर चीज के निर्विवाद स्वामी, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार में आप किसी चीज के मालिक बनना चाहते हैं लेकिन फिर विवाद होता है कि आप स्वामी हैं नहीं, लेकिन भगवान हर चीज के स्वामी है, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई बहस नहीं कर सकता। भगवान है एकमात्र दृष्टा, वही थे देखने वाले, उसमें विराट जगत नहीं था जब भगवान थे। अतः अपने स्वांशों और भिन्नांशों के बिना भगवान जो है अपने को अधूरा अनुभव कर रहे हैं और भौतिक शक्ति भी सुप्त थी उस समय भगवान की। सभा ए सतदा दृष्टा ना पश्यन् दृश्य में किरात मेने संत निवात्मान सुप्त शक्ति रसुप्त द्रे। भगवान दृष्टा है और विराट जगत दृष्टिगोचर है, तो हे विदुर ये बहिरंग शक्ति माया कहलाती है, इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। सभा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग एदम निर्ममे विभुम। तो भगवान जो है अपने दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के तीन गुणों में बीज स्थापित करते हैं। पुरुष अवतार भगवान के होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। काल वृत्या तु मायायाम गुणमय्याम मधोक्ष जहां पुरुषेणात्म भूते न वीर माधत्त वीरवान। तत्पश्चात नित्य काल से जो प्रभावित है पदार्थ उसका सार पर महातत्व कहलाता है, वो प्रकट हुआ। इस महातत्व में भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड के बीज बो दिए, बहुत से ब्रह्मांड है उनके बीज बोए भगवान ने। ततो भवन महातत्व अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम जंजन तमोनुदाह। इस महातत्व से जो है फिर बहुत भेद पैदा हुए और फिर उससे मिथ्या अहंकार पैदा हुआ। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टिगोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्यत्रिक्षयम्। फिर महातत्व से जो है मिथ्या अहंकार हुआ और उससे भौतिक तत्व हुए, स्थूल इंद्रियां हुई, मन पैदा हुआ और इत्याकार तीन गुणों में प्रदर्शित हुआ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। महतत्वाद विकुर्णा विकुर्वाणा अहम तत्व जायत कार्य कारण कर्तात्मा भूते इंद्रिय मनोमया वैकारिक तामसश्चेत्यहं त्रिधाम। अब मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंधा क्रिया करके मन में रूपांतरित हुआ और सारे देवता भी जो जगत को नियंत्रित करते हैं तो मिथ्या अहंकार और सतोगुण से ही उत्पन्न हुए हैं। अहम तत्वाद कुर्वाणां मनो वैकारिकाद भून वैकारिका ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यथा। इंद्रियां अहंकार के रजोगुण के परिणाम है, रजोगुण से पैदा हुई है, अतएव रजोगुण प्रधान है इंद्रियां। तेजसानि इंद्रियाण्येव ज्ञान कर्ममयानि च। अहंकार ध्वनि का परिणाम है, नहीं आकाश, माफ करिए, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। तो दूसरे शब्द में आकाश जो है परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश जो है कितना विशाल है, तो इससे कुछ भगवान की महिमा का अंदाजा लगता है। तामसो भूत सूक्ष्म यथाखम लिंगमात्मनः। अब जब भगवान ने आकाश पर दृष्टि डाली तो स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई और आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई। काल मायां से योगेन भगवन वीक्षितम नभां नभसो नूतम स्पर्शम विकुर्वन निर्ममे नीलम। तो इस तरह देख रहे हैं कैसे भगवान के शरीर से विभिन्न तत्व पैदा हुए, फिर वायु ने आकाश से क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया। रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हुई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अनिलोपी विकुर्माणो नभसो बलान्वित सरोज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय जल और स्वाद की उत्पत्ति हुई। अनलेनान्वितम ज्योतिर् विकुर्वत् परवीक्षितम् आधात तांबो रसमयम् कालमायां संयोगतः। फिर बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टि डाली तो उसमें पृथ्वी का रूपांतरण हुआ। पृथ्वी जिसमें मुख्य गंध गुण है पृथ्वी में। ज्योतिसाम्भो अनुसंतृष्टम विकुर्वन् ब्रह्म वीक्षितम् महीम गंध गुणामाधान कालमायां संयोगतः। आकाश से लेकर पृथ्वी तक के जो भौतिक तत्व हैं ये भगवान की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। भूतानां नभ आदीनां यद्यं भव्या बराबरम तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। तो इस प्रकार से जितने देवता हैं भगवान विष्णु की शक्ति के आविष्ट अंश हैं, जितने देवता पैदा हुए और बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं, उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं देवताओं को, और चूंकि वे वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं देवता लोग, इसलिए वो स्तुति करने लगे भगवान की। देखा ये जितने भी देवता हैं उनको कार्य दिया गया लेकिन जब वो नहीं कार्य कर पा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। तो देखा अर्जुन ने जैसे भगवान के शरीर में सब देवताओं को देखा तो वो इतिहास श्रीमद् भागवत में है। और ये देवता जो स्वतंत्र नहीं है भगवान से, ये दिखाने के लिए देखिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिनः नानात्वान् सत्क्रियां नानात्वात् स्वक्रियानीशा प्रोचो प्राञ्जलयो विभुम्। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं जो कोई भी भगवान और देवताओं को समान स्तर पर रखता है वो पाखंडी है, नास्तिक कहलाता है, है ना। आगे अब देवता लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देवताओं ने कहा हे प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छत्र के समान है। छत्र के समान जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस शरण के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्न तापो पश मातपत्रम प्रपन्न तापो पश मातपत्रम जन्मूल केतायतोरु संसार दुखम बहिरोपंती। हे पिता, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। देखो देवदा लोग शुरू में ही कह रहे हैं कि जो जगत भौतिक संसार है सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और अभी लोग मूर्ख जो है सुख पाने की आशा करते हैं इस संसार में। जब संसार बनाया उसी समय ये देखा गया कि ये सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं, अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो चरण ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए हम भी उनकी शरण ले रहे हैं। धातर्य दिस्मिन् भव इस जीवां ताप त्रयेणा विहतान सर्व आत्मन लभन्ते भगवंत वांग्री छायां सविद्यामत आश्रयेव। भगवान, हे भगवान, आपके चरण कमल स्वयं ही तीर्थों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि वेदों के सहारे आपके कमल जैसे मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। वेदों के पंखों के सहारे जो महर्षि हैं उनकी तुलना की गई है पक्षियों से, और वेद मंत्र जो है ना पंखे के समान है, तो पक्षी अपने पंख से उड़ते हैं, तो वेद मंत्रों के सहारे आपके जो है मुख कमल के घोंसले की खोज करते हैं ये पक्षी। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पापों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। मार्गंध यत्ते मुख पद्मनिडैन छंदा सुपर्ण ऋषियो विविक्ते यस्यागमर्षोद सरिन्वराया पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्न। आपके चरण कमलों के विषय में केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से और हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हम आपके चरण कमल रूपी पुण्य स्थान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। यच्छद्धया सुतवत्या च भक्त्यां समृज्यमाने हृदय वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराम ब्रजे में तत्तेंग्रे सरोज पीठम। हे प्रभु, आप विराट जगत का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और इसलिए अवतार लेते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति और साहस प्रदान करने वाले हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदं भुजन्ते ब्रजे में सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपंसाम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर और परिवार के लिए पास बद्ध हैं, आसक्ति से बंधे हैं, और जो लोग मेरा और मैं के विचारों में बंधे हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने शरीरों में ही स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। यत् सानुबंध है सती देह गय है ममा हमित्यूढ है दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी दृष्टि बाहरी कार्यकलापों में फंसी रहती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके गुण और कर्मों का आस्वादन करना है। तान वैहसन वृत्ति भी रक्षी फिर ये पराहृतान तन मनसा परेश अथो न पश्यन्तु रुगाय नूनम् ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्याम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीरता के कारण भक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं वे वैराग्य और ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। पाने नते देव कथा सुधायां प्रवृद्ध भक्त्यां विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथान्वीरु वैकुंठ दिस्म्यम। अन्य लोग भी जो दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हैं और जिन्होंने प्रबल शक्ति और ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है वे आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति करता है उसे कोई कष्ट नहीं होता, वही फल भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है बिना कष्ट के। तथा पर एचात्म समाधि योग बलेन जत्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेसाम त्रमाश्यान्न तु सेवयाते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत बार बार जन्म लेते हैं, इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक हैं। अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के लिए सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तत्तेव यम लोक सृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तं प्रति हर्तव्येति। हे अजन्मा, आप हमें वो मार्ग बताइए, वो उपाय बताइए जिसके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य पदार्थ और वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम और इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सकें और आपके लिए और अपने लिए भी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। यावत बलिम तेज हराम काल यथा वयम चान्न मदाम यत्र यथो भय साम त इमे ही लोका बलिम हरंतो न मदंत्यनुहा। आप समस्त देवताओं के आदि संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई आदि है ना कोई आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीवों को बहिरंग शक्ति में गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तुम न सुराणामसि सान्वयानाम कूटस्य आद्या पुरुषः पुराणः तुम देव शक्त्याम गुण कर्म योनौ रेतस्तु जायाम कवि मा दधेजः। हे प्रभु, महातत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण आदेश दीजिए कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। आप जानते हैं 33 करोड़ विभाग हैं इस सृष्टि के, उसके 33 करोड़ देवता हैं जो कि अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। ततो वयम मत्र मुखा यदर्थ बहु विवात्मन कर्मामे किं ते तुम नहा सुचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थ यद अनुग्रहण। तो इसके बाद मैत्री ऋषि बताते हैं किस तरह भगवान ने महातत्व के संयोग ना होने के कारण विश्व के जो जो सृष्टि का जो कार्य है रुक गया, इसके बारे में भगवान ने सुना। इति तासाम सशक्ति नाम सती नाम असमित सहाम प्रसुप्त लोक तंत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वरः। अब भगवान ने क्या किया, तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंग शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगे पदा विशं। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जैसे कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर कार्य करने लगे। सोनो प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्मे प्रबोधयन। जब ब्रह्मा जी की इच्छा से 23 तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का ये विश्व रूप विराट शरीर प्रकट हुआ है। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशति को गण प्रेरितो जनयत स्वाभिर मात्राभिरधि पुरुषम। जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया तो ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए जिसमें सारे लोग हैं और पूरी सृष्टियां टिकी हैं विराट रूप में। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रिया विश्व श्रृंगण चुक्षो भाण्योन्यम आसाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा। अब विराट पुरुष ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहे विराट पुरुष भगवान जो है और सारे जीव उनके साथ ही शयन करते रहे। अगर भगवान शयन कर रहे हैं तो कौन जीव जाग सकता है। हिरण्मय सपुरुषः सहस्र परिवत्सरान आंडकोशवासापसूम सर्वसत्वोपब्रीहितः। भगवान का जो विश्व रूप ये प्रथम अवतार है, ये असंख्य जीवों की आत्मा है और उनमें पूरी सृष्टि टिकी हुई है और उन्हीं से ही फलती फूलती है पूरी सृष्टि भगवान के विश्व रूप में। ये सहस सत्वानाम आत्मांसा परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासं भूतग्रामो विभाविते। फिर भगवान विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना